समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी, आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Dharmendra and a very very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama, where we bring you a selection of news, of course our discussion segment called Dateline India, reports, capsules, business news, sports news, tributes to personalities who either have their birth or death anniversaries and much much more. But today we know that the entire nation is celebrating different harvest festivals by different names, so here's wishing everyone a very happy Gudi Padwa, उगादी, चैत्र शुक्लादि या जो भी आप अपने रीजन में उस फेस्टिवल को किसी भी नाम से पुकारते हैं। And now let's start with the headlines. As many as 1,210 candidates left in fray for second phase of Lok Sabha polls across 13 states and UTs.
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां तैनात करने को कहा।
Prime Minister and Senior BJP Leader Narendra Modi says, India has demonstrated that nothing is impossible for it to achieve.
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की।
दिल्ली कोर्ट एक्सटेंड्स जुडिशियल कस्टडी ऑफ जेल्ड बीआरएस लीडर के कविता टिल द 23rd ऑफ दिस मंथ इन कनेक्शन विद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम।
और सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार, निफ्टी भी नई ऊंचाई पर पहुंचा।
And now, of course, we know that it's our time for Dateline India, in which we take a look at the developments that take place. But sabse zyada ahem khabar to aaj yahi hai that India is celebrating different harvest festivals known by different names. And Dharmendra, hamara mulk jo hai bada haseen hai because itni iski diversity hi iske festivals ko contribute karti hai, isn't it?
Ji, bilkul aapne sahi kaha. Aur tyohar hamare desh ki visheshta hai aur yahan par तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। आज ही देखिए, जहां एक तरफ चैत्र महीने की शुरुआत हुई और इसके साथ ही कई सारे त्योहारों की भी शुरुआत हो गई है। चैत्री दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है, हम अगर बात करें तो चेटी चंद की शुरुआत हो गई है। ऐसे ही अनेक त्योहार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आज मनाए जा रहे हैं।
Yes, in fact, the Hindu New Year is celebrated in India on the first day of the Shukla Paksh of the Chaitra month, which generally falls in March or April.
जी हाँ, और अगर हम बात करें नए साल, जो नई फसल होती है ना, उसकी भी माना जाता है कि आज से शुरुआत होती है, वो नई फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं, कई जगह पर नई फसलों के जरिए ही त्योहार मनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज से शुरू हो रही हैं।
और आज नवरात्र के भी फर्स्ट डे है, जाहिर सी बात है, तो सब लोग बड़ी जोश खरोश से नवरात्र की हम लोग ने देखा तैयारियां कर रहे थे, पूजा के फूल दिख रहे थे सुबह से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट टू विटनेस इन फैक्ट। एंड डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया हैव देयर ओन नेम्स एंड कस्टम्स फॉर द सेलिब्रेशन। इन नॉर्थ इंडिया द न्यू ईयर कोइंसाइड्स विद बैसाखी, विच इज अगेन अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स इट एज गुड़ी पाड़वा, साउथ इंडिया एज उगादी और पुथांडू, एंड उड़ीसा एज महाविशुभ संक्रांति। इन गुजरात द न्यू ईयर इज ऑब्जर्व द डे आफ्टर दिवाली एंड इज नोन एज बेस्तुवारस। एंड अगर बात करें उगादी की, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इन द ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर, इज सेलिब्रेटेड डाउन साउथ बाय दिस नेम। उगादी इज अ मेजर फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। इट टिपिकली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द हिंदू लूनर कैलेंडर।
और आपने चैती दुर्गा पूजा की बात की, जो चैत्र मास में मनाया जाता है, तो वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 9 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई और साथ ही आज हिंदू नववर्ष 2081 भी मनाया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि नवरात्रों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के चलते मंदिर प्रबंधक समितियों ने भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं।
And if we talk about Ugadi, on Ugadi, people clean and decorate their homes. They prepare traditional foods such as Ugadi Pachadi, which is a mixture of six flavors. All the six flavors are sweet, sour, salty, bitter, tangy and also spicy. People also wear new clothes and they visit temples to seek blessings of God. And it is also a time for people to visit friends and family and exchange gifts and sweets. One of the most important rituals of Ugadi is that preparing and eating the Ugadi Pachadi, which is a dish that is meant to symbolize the six different emotions or experiences that one goes through in life, that is happiness, sorrow, anger, fear, disgust and surprise.
और उगादी की आपने बात की तो वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला ये नया साल है और ये वर्ष का वो समय है जब संपूर्ण प्रकृति उत्सव के उत्साह में डूबी हुई प्रतीत होती है। नए पत्ते, नई कलियां, ताजी हवा और तेज धूप। उगादी त्योहार एक नए युग के जन्म का भी प्रतीक है और सारा ये हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष और वसंत के पहले महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है।
Yes, Dharmendra and people in Maharashtra and from Konkan coast, they celebrate Gudi Padwa today. It is of course a spring festival. In Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and nearby areas of Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu, it is celebrated on the first day of Chaitra month to mark the beginning of the new year.
और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को किसानों द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए नए साल और गन्ना, गेहूं और जौ जैसी रबी फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। और एक खास बात यह भी है सारा कि गुड़ी पड़वा पर घरों के बाहर एक गुड़ी, एक प्रकार का जो झंडा या बर्तन होता है, उसको फहराया जाता है और माना जाता है कि बुरी आत्माओं को दूर रखता है। ये एक लंबे बांस के खंभे से बनाया जाता है और नीम के पत्तों, गन्ने के तने, फूलों और आम के पत्तों की माला, एक रेशम के दुपट्टे और एक चांदी या तांबे के बर्तन से सजाया जाता है।
Yes, of course, we have seen that stag which looks very beautiful. एक कलश के रूप में यूजली लोग जो है उस बर्तन को रखते हैं। And again, people जो हर त्योहार पे करते हैं, they clean and decorate their homes, prepare traditional foods and visit family and friends on Gudi Padwa. और जम्मू एंड कश्मीर में नवरेह भी आज शुरू हो गया है, जिसको यूजली कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट करते हैं। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द कश्मीरी न्यू ईयर। कश्मीरी पंडित डेडिकेट नवरेह फेस्टिवल टू द गॉडेस शारिका एंड पे होमेज टू हर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, लार्ज नंबर ऑफ डेविटीज आर पेइंग द ओबेसेंस एट शारिका देवी टेम्पल अटॉप द हरि पर्वत ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर सिटी, द दुर्गा नाग टेम्पल इन श्रीनगर, मां राज्ञाना देवी खीर भवानी टेम्पल्स एट तुलमुला इन गांधरबल एंड टिक्कर इन कुपवाड़ा इन कनेक्शन विद द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि।
और आज सिंधी समुदाय नए साल के रूप में चेटी चंद के रूप में भी मनाता है और भगवान झूलेलाल के उद्भव दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल को प्रार्थना की जाती है और ताहिरी यानी मीठे चावल और साई भाजी जैसे व्यंजन बनाकर त्योहार मनाया जाता है। पालक को चना दाल के छिड़काव के साथ भी पकाया जाता है। तो बहुत सारे, अगर हम बात करें तो त्योहारों की शुरुआत हुई है, त्योहार आज मनाए जा रहे हैं, चैती नवरात्र भी शुरू हो गया है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
वेल, विशेष तो यही है कि आज स्प्रिंग फेस्टिवल्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद उगादी। लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
द कलरफुल ब्लॉसम सिंबलाइजेस ग्रोथ एंड दस जैस्मिन विच ब्लूम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर इज ऑफर्ड टू गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ गार्लैंड्स। देयर आर मेनी कस्टम्स ऑफ द फेस्टिवल विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ उगादी सिग्निफिकेंस एंड सिम्बोलिज्म। वन सच कस्टम इज दैट मेकिंग उगादी पचड़ी एज इट सिंबलाइजेस द एसेंस ऑफ लाइफ। दिस स्पेशल डिश इज प्रिपेयर्ड विद इंग्रेडिएंट्स लाइक जैगरी सिंबलाइजिंग हैप्पीनेस, साल्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, टैमरिन चैलेंजेस, नीम फ्लावर्स डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, रॉ मैंगो इंडिकेटिंग surprises and new challenges, chili powder showing the angry moments in one's life. The dish includes all the tastes of life. It teaches that life is a mixture of all the emotions. Each and every ritual followed on this day has its own significance. Hanging of mango leaves and placing a kalash near the door of the calling of the priest to make the yearly forecast are all part of Ugadi's significance and symbolism. Vibrant colors and joyous energy flooded the streets of Vishakhapatnam as families emerged in the traditional attires to celebrate Ugadi, the new year. The day commenced with people rising early in the morning to take bath, wear new clothes, followed by visit to temples seeking divine blessings for the upcoming year. Homes are decorated with mango leaves and colorful rangolis added to the festive mood. People from different walks of life throng shopping malls with family members. The shopping malls going for heavy discounts to attract the customers. All these elements work together, the Ugadi festival importance is very significant. This is Padmaja signing off for Parikrama.
देश के अन्य हिस्सों की तरह पंजाब में भी नवरात्रि का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया है. इस मौके पर लगातार धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है. एक रिपोर्ट सुनते हैं शिशु शर्मा से.
चैत्र मास के नवरात्रों और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत पर पंजाब के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है. अमृतसर के श्री दुर्गाना मंदिर, पटियाला के माता काली देवी मंदिर और जालंधर के श्री देवी तालाब मंदिर समेत राज्य के अन्य सभी छोटे बड़े मंदिरों में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं. नवरात्रि पर्व के आज पहले दिन माँ दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है. मंदिरों में हवन यज्ञ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सुबह से ही चल रहा है. शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर.
That was the report from our various correspondents about these various festivals. Moving on, what's happening in Delhi, let's see. Well, the National Museum in New Delhi is hosting an exhibition of artwork of neurodivers who are intellectually challenged with cerebral palsy or Down syndrome or autism. The 5-day exhibition was inaugurated today by Director General of National Museum, Dr. B.R. Mani, founder of Art Sanctuary in Bengaluru, Dr. Shalini Gupta, and eminent journalist Raj Chingappa. Talking to Akashwani News, founder of Art Sanctuary in Bengaluru, Shalini Gupta said that the main objective of the exhibition is to bring this very special art to the mainstream.
मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है दी आर्ट सेंचुरी. हम लोग न्यूरोडाइवर्स यंग अडल्ट के साथ आर्ट को प्रोत्साहित करते हैं. अटेम्प्ट एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू बी एबल टू इंक्लूड दिस वेरी स्पेशल आर्ट दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनटू मेनस्ट्रीम आर्ट. हमारे बच्चों का आर्ट समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को. वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो दिल से निकलता है, उसमें कोई स्किल्स नहीं इंटरफेयर करती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमको गैलरी स्पेस मिलने में. तो आई एम so honored and feel so proud to say that the National Museum on Janpath under the Ministry of Culture has given us their main display hall called the Ajanta Hall on the first floor. Aap sabko dil se aamantrit karti hoon ki aap aayein 9 tarikh se 14 tarikh tak, subah 10 baje se shaam ko 6 baje tak Ajanta Hall mein padhare. In bachon ko autism, Down syndrome, cerebral palsy, is tarah ke jo cognitive impairments hote hain, उन बच्चों को अब नया शब्द है न्यूरोडाइवर्सिटी. इसका माने है कि इट इज जस्ट द वे द ब्रेन, द न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन हैज बीन इम्पैक्टेड, इट इज वायर्ड डिफरेंटली. वो फर्क नहीं है, वो किसी तरह से कम नहीं है. उनका सोचना और उनका उसको एक्सप्रेस करना डिफरेंट है, इसलिए हम उनको न्यूरो माने न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से कनेक्टेड, डाइवर्स माने डिफरेंट, तो हम उनको न्यूरोडाइवर्स कहते हैं.
कैंसर के इलाज में मदद करने वाली जीन आधारित सीआरटी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट ने विकसित किया है. विदेशों में इस इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हालांकि भारत में इसका खर्चा सिर्फ कुछ लाख रुपए ही आएगा. आम लोगों के लिए क्या मायने हैं इस थेरेपी के, बता रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता.
कार टी सेल थेरेपी में कैंसर सेल्स को टारगेट करने और इन्हें नष्ट करने के लिए शरीर की इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके जरिए कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस थेरेपी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहा जाता है। इसके अलावा कार टी सेल थेरेपी में कैंसर सेल्स की पहचान करने और उन पर हमला करने के लिए मरीज की टी सेल को संशोधित किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट के लिए इन सभी को टारगेट किया जाता है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हसमुख जैन ने आकाशवाणी पुणे से बातचीत में इस बारे में विस्तार से बताया।
कार टी सेल थेरेपी जो है वो नए प्रकार का सेल थेरेपी है जिसमें मरीज के सफेद पेशी के कण लिए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट को लेके सेपरेट करके हम लैब में उसको हम मॉडिफाई करते हैं। टी लिम्फोसाइट नॉर्मली हमारे प्रतिरोधक शक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि कैंसर के कण को आइडेंटिफाई करके नष्ट कर सकता है। कैंसर पेशेंट्स में ये टी सेल्स अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं तो इसीलिए उनको लिया जाता है लैब में और उनको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जिससे कि ये कैंसर के कण के को आइडेंटिफाई करके उनको नष्ट कर पाए। इस तरीके के जेनेटिक इंजीनियरिंग से कार टी सेल थेरेपी बनता है। इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं एंड इस समय ये मेनली ब्लड कैंसर्स में अप्रूव्ड है, पर्टिकुलरली ल्यूकीमियास लिम्फोमास में, और मायलोमा में अभी भी ये रिसर्च स्टेज पे है इंडिया में, बट ल्यूकीमियास एंड लिम्फोमास में ये अप्रूव्ड है। इस थेरेपी से अभी तक जो अप्रूवल मिला है वो ऐसे सिचुएशन में मिला है जिन मरीजों में जो रेगुलर केमोथेरेपी काम नहीं की है या बीमारी लौट के आ गई है उन मरीजों में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब कार टी सेल थेरेपी की वजह से ऐसे मरीजों में भी और या इस सिचुएशन में भी हम क्योर की उम्मीद रख सकते हैं। अब इंडिया में ये 40 लाख रुपीज की कॉस्ट में अवेलेबल होने की वजह से खर्चा काफी कम होने की उम्मीद है।
वर्ष 2022 में करीबन 15 लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके मद्देनजर भारत में पहली बार इस्तेमाल होने वाली कार टी सेल थेरेपी यकीनन मददगार साबित होगी। परिक्रमा के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर।
And Dharmendra, in view of the upcoming Lok Sabha polls, we present to our listeners a capsule which is based on state profiles giving details of the number of phases, dates of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. So first, let's go to Andaman and Nicobar Islands today. Andaman and Nicobar Islands is all set to go to polls in the first phase of Lok Sabha elections for its lone parliamentary constituency on the 19th of this month.
Election Commission is leaving no stone unturned to ensure maximum participation from the islanders. As a part of sweep, they are conducting bike rallies, gatherings, art installations, signature campaigns and other innovative means to make the voters aware and interested in taking part and putting their vote. To run the election process without any hassle, a large number of polling officials has been provided with training in phased manner. Security and checking have also been raised in the islands to curb any kind of illicit activities prior to election. This time there will be a total of 12 candidates including 2 women and 5 independents in Andaman Nicobar constituencies. Most prominent figures will be former 3-time MP Vishnupad Ray, who is contesting from BJP ticket, sitting MP Kuldeep Rai Sharma from Congress, D. Aipan from CPIM, KJB Selvaraj from AIADMK and Manoj Pal from Andaman Nicobar Democratic Congress. The narrative is majorly revolving around the issue of road construction, especially the poor condition of NH4 in the middle and north Andaman area, scarcity of water during summer days, issue with electricity supply and poor healthcare infrastructure facilities in the islands. One more major demand coming from the residents is job reservation for islanders in government sectors. Rakesh Chandralal, Akashwani Samachar, Port Blair.
और सर, अब बात नवादा संसदीय क्षेत्र की, जहां 19 अप्रैल को चुनाव होना है जमुई, औरंगाबाद और गया के साथ। यहां की खास बात यह है कि 1989 के बाद से यहां कोई भी जो वर्तमान एमपी है वो फिर से चुनाव नहीं जीत सका है। ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता से।
इन नवादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर देन 17 लाख इलेक्टोरेट्स विल डिसाइड द पॉलिटिकल फेट ऑफ 8 कैंडिडेट्स हु आर इन द फ्रे। द मेन कॉन्टेस्ट इज एक्सपेक्टेड बिटवीन एनडीए एंड अपोजिशन ग्रैंड अलायंस। इन द 17th लोकसभा द सीट वाज वन बाय लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट चंदन सिंह हु डिफीटेड आरजेडी कैंडिडेट विभा देवी। दिस टाइम द बीजेपी हैज केप्ट दिस सीट फॉर इट्स कैंडिडेट इन अ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ एनडीए। विवेक ठाकुर ऑफ बीजेपी is contesting for the first time from Nawada seat, while from Grand Alliance, RJD has also pitted a first-timer Shravan Kushwaha from this seat. RJD rebel Vinod Yadav and Bhojpuri singer Gunjan Singh are also prominent candidates who are trying to make the contest multi-corner. Rajouli and Govindpur assembly constituency under this parliamentary seat are Naxal-affected. Most of the area of this constituency is underdeveloped. Areas like Meskor are facing perennial water crisis, unemployment, illegal mining, underdevelopment and lack of industrialization are main political issues of this Lok Sabha segment. Dharmendra Kumar Rai, Akashvani News, Patna.
And now let's listen to Azadi Ka Safar.
Today we remember freedom fighter Mian Sahib Khurd, who belonged to Aurangabad, Maharashtra. He actively participated in the First War of Independence in 1857. Mian Sahib fought the British at different places in the Nirmal area of Aurangabad. He was killed in an encounter with the company's army advancing towards Nirmal on the 9th of April, 1860. AIR News salutes the martyr.
We remember Shair-e-Kashmir, Ghulam Ahmad, who's popular by his pen name Mehjoor, who died on the 9th of April 1952. Mehjoor worked in the government of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. As a result of this, he travelled far and wide in the valley, getting acquainted with the plight of the landless peasantry. This familiarity with destitute farmers left a deep imprint on his poetic style. He took poetry out of the confines of elite literary circles and ascribed to it the language of common folk, that is Kashmiri. Rabindranath Tagore called Mehjoor the Wordsworth of Kashmir.
His poem, Vallo Ha Bhagwano, was adopted as an anthem of resistance, the rallying cry for the freedom movement in Kashmir. He calls out to his people to nurture their garden, ascribing personal responsibility to rise up against oppression.
Valoha bhagwano no baharukshan paida kar phalan gul gath karan bulbul tithui saman paida kar phalan gul gath karan bulbul tithui saman paida kar.
His poems gave momentum to the struggle and served as a clarion call to the masses to free their nation from the chains of bondage. In another beautiful poem, Gulshan Watan Chusone, Mehjoor expresses his love for the nation with pride.
Bulbul Vanan Chuposhan Gulshan Watan Chusone and the Anti Safed Sangar Devari Sangi Marmar.
The government of India released a postal stamp in 2013 to commemorate Ghulam Ahmad Mehjoor.
We also remember Sharan Rani, who was born on the 9th of April 1929. She was an Indian classical instrumentalist and was India's first woman sarod exponent and came to be popularly known as Sarod Rani. She was born in Old Delhi. Sharan Rani learned to play the sarod from Ustad Alauddin Khan and his son Ali Akbar Khan.
Chandni Chowk mein ek gali hai, jis gali ka naam hai Jugal Kishor. Uske andar hamare Baba ji ke parivar ke sab makan hua karte the. Usi ek makan mein hum 10 bhai behan the aur main sabse choti. Us samay angrezon ka raj tha Delhi mein. शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ.
She played a vital role in introducing and popularizing Indian classical music abroad.
Sharan Rani also actively participated in India's struggle for freedom. Over the years, she silently helped many Indian independence activists in need. She never turned down a request for a noble cause and gave many performances for charitable and worthy causes. Sharan Rani taught music through the Guru Shishya Parampara and never took any fees from her students.
Sharan Rani also wrote the history of the sarod titled The Divine Sarod, Its Origin, Antiquity and Development, which was released in 1992 by K.R. Narayanan, the then Vice President of India. A second edition of the Divine Sarod was released in 2008 by I.K. Gujral, former Prime Minister of India. After battling cancer for a few years, she died on the 8th of April 2008, a day before her 80th birthday. We salute the great daughter of the nation.
That was Azadi Ka Safar. And if we talk about business news, well, the Sensex and the Nifty trade flat amid volatility and closed in red after hitting record highs earlier in the day. The Sensex closed at 74,683, while Nifty settled at 22,642.
और खेलों की बात करें तो आज IPL क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. आज सबसे पहले याद करते हैं राहुल सांकृत्यायन को. हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का आज जन्मदिन है, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है. वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषित भाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए. राहुल सांकृत्यायन को अनेक पुरस्कारों के अलावा 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में भारत सरकार के पद्मभूषण अलंकरण से विभूषित किया गया.
And now we remember Shakti Samant today. Well, he doesn't need any introduction. A director and producer who founded Shakti Films and who is most known for films such as Anand Ashram, Anusandhan, Barsaat Ki Ek Raat, and Howrah Bridge, Insan Jaag Utha, Chinatown, Kashmir Ki Kali, and Evening in Paris, Aradhana, Kati Patang. Toh matlab keh sakte hain hit pe hit filmein di aur jinke bade hit gaane bhi rahe, isn't it?
Aur Saira, agar unki baat kare to Rajesh Khanna ko superstar banane wale wahi nirdeshak the. Unki Amar Prem, Aradhana aur Kati Patang jaisi filmein jo thi wo जो है निर्देशित की थी शक्ति सामंत ने. और उनकी फिल्मों के जो गीत रहे वो भी बेहद खास रहे हैं.
Yes, probably maybe because of this reason that Shakti Samant himself actually wanted to be a playback singer in the beginning, but of course destiny had something else planned for him. So unki gaane bade acche hote hain unki films ke. Why not let's listen to a medley.
Gari koi bhadke to saavan use budhaye, saavan jo agan lagaye use कौन बुझाए. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है.
With Insaan Jaag Utha starring Sunil Dutt and Madhu Bala, Shakti Samant wanted to shift to making films on social themes. But when it was unsuccessful, he shifted back to making entertainers for another decade, returning to social themes with Aradhana. In all, Samant directed 43 feature films, including 37 in Hindi and 6 Bengali films.
And if we move on and talk about Abhinetri Jaya Bhadudi, whose birthday today is, तो जया ने 15 साल की उम्र में ही अपना अभिनय करियर शुरू कर दिया था, जब एक बंगाली फिल्म महानगर में उन्होंने काम किया था. इसके बाद जल्द ही वो मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा के फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं.
Yes, today is Jaya Bachchan's birthday. She has won record 9 Filmfare Awards and also a Padma Shri. And she made her film debut as a teenager, as you said, in Satyajit Ray's Mahanagar, followed by her first screen role as an adult in the drama Guddi, which was directed by Hrishikesh Mukherjee. She was noted for her performances in films like Upar, Koshish, Kora Kagaz, and starred alongside Amitabh Bachchan also, who is now her husband, in films like Zanjeer, Abhiman, Chupke Chupke, Mili, and the cult film Shole. Let's listen to this beautiful song.
बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे
सजन बिंदिया ले लेगी तेरी बिंदिया
रे आए हाय तेरी बिंदिया रे
और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे इजाजत लेने का तो धर्मेंद्र मणि राजेश और सायरा मुझतबा को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की नमस्कार।